का अंतिम दिन है। आप लोग सभी से निवेदन है, यह कलयुग का नाम सब लोग करेंगे, अपना मंत्र जो कुछ है करें। गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगी या करेंगे कि ब्रज का प्रेम के नीचे हम कुछ नहीं चाहते, राधा जी की दासित्व हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, और इस हरे नाम का खूब कीर्तन करेंगी। जोर से करें, धीरे कीजिए, किसी भी प्रकार से ये नाम, चलते फिरते उड़ते रसोई बनाते हुए भी हरि नाम कर सकते हैं। अब समय हो गया, और यदि हमारी कुछ त्रुटि हुई हो, कठोर वाणी हो गई है, तो आप लोग मन से निकाल करके क्षमा करेंगे। गौर प्रेमानंदे मंद में चल रहा था, हमने बतलाया भक्ति के तारतम्य से भक्तों का तारतम्य, यहीं पर रख लिए क्या है, छोड़ दीजिए। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति का तारतम्य है, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो पूजा की जाती है भगवान की, वो पूजा नहीं है। दूसरे देवताओं की जो पूजा की जाती है वो गोविंद के पूजा के बराबर नहीं हो सकती, वो भगवत भक्ति में बाधक होता है। दूसरे देवताओं की पूजा करना, उनका आदर करो, किंतु हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण रहेंगे, उनको गुरु मान लो। भगवान शंकर को, पार्वती जी को, हनुमान जी को गुरु मान लेने में कोई दोष नहीं है, किंतु पृथक देवता के रूप में अपनी संसारी कामनाओं का पूजन, ये गोविंद की भक्ति के लिए बहुत बड़ा भारी बाधक है। इसलिए निष्काम भक्ति भी नहीं चाहिए। निष्काम इसलिए कहा जाता है कि जागतिक कोई कामना न रहे, किंतु प्रेम की कामना बनी रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, हनुमान जी, पांडवों को और उद्धव जी तक का हमने दिखलाया। ये भक्ति का तारतम्य के अनुसार में ये भक्तों का तारतम्य है। अब भक्तों को नहीं ले रहे हैं, भक्तों के जो आराध्य हैं, जो कृष्ण की निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, उन श्रीमती राधिका और गोपियों के भक्ति की बात कर रहे हैं, उनके प्रेम की कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? मधुरे न समापयेत। कोई भी चीज़ हम आरंभ करते हैं तो अंत में हम मीठा से शेष करते हैं, खीर परमान नराबड़ी रसगुल्ले अंत में खा करके, तब फिर पहले चटनी ले सकते हैं, करेला भी ले सकते हैं और दूसरी चीज़ें लेंगे, किंतु अंत में जब खाना पीना पूरा हो जाएगा तो अंत में दही, बूरा, राबड़ी, रसगुल्ले इत्यादि लेकर के मधुरेण समापय। इसलिए आज ही का दिन, अभी इस टर्म में आज का दिन और शेष है एक घंटा, इसलिए थोड़े समय में संक्षेप में कुछ गोपियों की चर्चाएं करना चाहता हूं, जो उद्धव के भी आराध्य हैं। कृष्ण जब अपनी पाठशाला में पढ़ करके जब मथुरा में लौटे तो जमुना की तरफ में देखा, और मथुरा में अपने राजभवन पर वसुदेव जी के घर पर चढ़ करके देखा, उत्तर की तरफ में पास ही वृंदावन को, माता पिता की याद आई, सखाओं की याद आई, ब्रज की याद आई, सबसे अधिक गोपियों की याद आई। उधो ब्रज मोहि विशरत नाही, उधो हे उद्धव, उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं सकता, मेरा शरीर तो है यहां, किंतु मेरा मन प्राण सब कुछ आत्मा ब्रज में है, उन सखाओं को कैसे भूल सकता हूँ जिनके साथ में मैंने गैयाँ चराई, जो हमारे लिए प्राण देने को तत्पर रहते हैं। उस माता पिता नंद और यशोदा जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता। कुछ देने के लिए हूँ किंतु मुझे ब्रज में ही जाना पड़ेगा, और गोपियाँ उनको भूल नहीं सकता। मत चिता मदगत प्राण तैक दई है का, वो गोपियाँ कैसी हैं, मत चिता। गीता में एक आया है श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी मांग नमस्कुरु माम एव यशीष प्रतिजानो प्रियशिष प्रियोशी। अर्जुन तुम हमारा प्रिय है इसलिए बतला रहा हूँ, सब उपदेशों का गीता का सार तुमको मैं एक शब्द में बतला रहा हूँ, मन मना भव, अपने मन को हमारे अंदर दे दो। कैसे दे दें, मन को देना कठिन है, वायु को कंट्रोल करना ना सहज है, मन को कंट्रोल करना सहज नहीं। इसलिए मन को कैसे दे दें, कैसे दे दे, कृष्ण ने ही बतलाया है कैसे मन मना भाव होता है। और मच्चित मदगत प्राण तैत दैह का, सारे दैहिक कार्यों को उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। हमारे लिए केवल प्राण उनके बचे हैं, जो मैं कल आ जाऊंगा, इसलिए कल ही आऊंगा लौट करके, इसलिए हम लोग जीवित हैं। इस चीज को समझे, मन मना भव अथवा मत गत चित्ता, चित्त को देने से ऐसे नहीं हो जाता है। कैसे होता है जरा एक उदाहरण के साथ में समझिए, गोपियों का कैसा मत चित्त है या मन मना भाव है। कोई गोपी कहीं गांव से नई ब्याह करके आई है, 16 वर्ष की अभी उम्र है, बड़ी सुंदरी खूबसूरत है, आज पहली बार नंद गांव में विवाहित होकर के आई, पहले से सुन रखा है श्याम सुंदर के सौंदर्य और आकर्षण के संबंध में। सवेरे का समय था, गोचारण में कृष्ण जा रहे थे, बछड़ों को लाखों बछड़ों को लिए हुए जा रहे हैं और लाखों सखा हैं और सभी लोग कृष्ण की स्तुति बड़ाई कर रहे हैं, हमारे सखा की जय हो, सखा की जय हो। और उस समय में जो जहां सुना, गोचारण का समय हो गया, जो जहां था वहीं से अंधा भी अंधे को पकड़ करके कृष्ण को दर्शन करने के लिए आने लगा, जितनी गोप माताएं थीं वो देखने लग गई, जितनी नवेलियां थीं नंदगांव की महिलाएं ब्रजांगनाएं वो भी झरोखे से कोई देखने लगी, कोई अट्टालिका पर चढ़ गई, कोई अपने कुंज से पास से देखने लगी, ये कृष्ण कैसे बंसी बजाते हुए गैयों को बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं। जब वो नवेली गोपी जब जाने के लिए प्रस्तुत हुई कृष्ण को दर्शन करने के लिए, उसकी सास ने पकड़ लिया, खबरदार मत जाना, जाएगी तुमको काला सर्प डस देगा, कभी विष नहीं उतर सकता, खबरदार मत जाओ, वो बड़ा तेज है, उसका विष बड़ा जहरीला है, वो कभी जीवन भर नहीं उतरता, मत जाना। तो जाने के लिए छटपट कर रही, अरे तो तुम्हारी बेटी क्यों गई, उसको मना क्यों नहीं किया, अरे मैं तुमको कहा समझा रही हूँ, बेटी के बाद पीछे देखेंगे, तुम मान जाओ मत जाओ। तो जितनी है ब्रज की वधुएं हैं, लड़कियां हैं, सभी दर्शन करने के लिए जा रही, हम ही को काटेगा, अरे वो सबको काटता है, किसी को छोड़ता नहीं, तुम मत जाओ, तुमको बचाना मैं चाहती हूँ। तो उसने कहा जैसे, तो तुम फिर क्यों जाएगी, हम ही को बैठा करके, मैं तो जरूर जाऊंगी, किसी तरह से मान नहीं रही, नहीं मान रही थी। देखो ऐसा भुजंग काटेगा जो तुम्हारा विष नहीं उतरेगा। वो रोकती रह गई लाख, रुकी नहीं। क्यों? कृष्ण दर्शन की लालसा। ऐसे दर्शन की किसी की लालसा होगी ना, माता पिता डांटेंगे, भाई डांटेंगे, पति डांटेगा, सब पृथ्वी के लोग डांटेंगे, कुत्ते भी भौंकेंगे, किसी की परवाह नहीं होगी, तब कृष्ण मिलेंगे। ऐसे नहीं मिल जाते, बड़े टेढ़े हैं, आते नहीं, और जब आते हैं तो निकल करके जाते नहीं हैं। इतने में वो किसी प्रकार से झटक करके और दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। जिसमें दरवाजे पर खड़ी हो, कृष्ण बहुत दूर से सबकी इच्छा जानने वाले हैं, समझ गए जी हमारा दर्शन करना चाहती है। बस एक बछड़े की पूंछ पकड़ी, बछड़ा बड़ा सुंदर, और वो फुदक करके झट वहीं आ गया जहां पर कि वो खड़ी थी। गोपी पास में आ गई और कृष्ण झट उसको पकड़े हुए, मानो उसको संभालने के लिए आ रहे हैं, उसकी नियत से नहीं, बहुत बहाना भी जानते हैं, बस झट वहीं पर उपस्थित हो गए और अपनी बंसी की नोक से उसके ठोड़ी में छू दिया। छुआ क्या, उसके चित्त को ही ले लिया। खड़ी की खड़ी रह गई और कृष्ण उसके तरफ में देखते हुए मुस्कुराते हुए उसके हृदय को लेकर गोचारण के साथ में वो चले गए। जब तक चले नहीं गए उधर ही देखती रह गई। जब बछड़े गाय सब चली गई तभी देखती रही, धूल उड़ते रही तब तक देखती रही, जब धूल भी शांत होगी तब तक वहीं पर खड़ी है। सासाई कहा था ना, काला सर्प काटेगा विष उतरेगा नहीं, अब काट दिया, बतलाओ तो तुम्हारी अब मैं चिकित्सा क्या करूं। जग झोरा वो तो चित्त तो वहां है। थोड़ी देर के बाद में जबरदस्ती पकड़ करके घर के अंदर में ले गई। इसको कैसे होश लाऊं, कहे दधी मत, जाओ घर से दही का मटका लिया, मटकी लिया। वो गई भीतर में, राई भरी हुई मटकी ले आई। उसको अभी ज्ञान भी नहीं है कि दही है कि राई है, और राई की मटकी ले आ करके और चित्त तो श्याम सुंदर में और मथने लगी। सास फैराई, ये तो दही नहीं मत रही है, राई मत रही, कहा था ना, अरे उठो होश में आओ। फिर भी होश में नहीं आई तो उसके गोदी में अपना लड़का दे दिया और सिर पर एक मटकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, जाओ पानी ले आओ, और एक हाथ में रस्सी और डोम, और उस पर भी एक मटकी, दूसरी मटकी, जैसे ब्रज की होती हैं ये सारे मटकियों को लेकर के जाओ पानी भर करके ले आओ। पानी भी कहाँ से, ब्रज में तो जानते हैं, अब तो निकट में हो गया है कहीं कहीं, नहीं तो गांव के एक किनारे में एक मीठा कुआं बड़ा मुश्किल से मिलता था, वहाँ से डोल से भर करके पानी लाना पड़ता था। एक, दो, तीन, चार, पांच घड़ाएँ लेकर के चलती थी। आजकल तो ये सब महिलाएं हैं, एक घड़ा दिया तो थसक करके बैठ न जाएं, और यदि चक्का, यदि वो आटा पीसने का, तब ब्लड प्रेशर ही उतर जाएगा। और पहले वाला जैसे मूसल दे दे तो उठेगा ही नहीं। तो वो बेचारी भेज दिया, गई कुएं पर, वहां पर और भी पानियां भर रही थी गोपियां। जब वो रखा घड़े को, एक एक करके रख दिया, रस्सी को भी ले ली, बच्चे को भी उतार करके रख लिया। अब उसको ये ज्ञान है कि ये बच्चा है कि वो मटकी है। डोल जैसे बांध करके तो पानी में लगाएगी, तो फंदा बनाया, तो फंदे घड़े में या डोल में ना हो करके, डोलची में ना हो करके, वो घड़ा का फंदा किस में लगा दिया, बच्चे के गले में लगा दिया। इतने में सब औरतें जो वहां पर खड़ी थी गोपियां, उन्हें अरे ये क्या, ये क्या, कहते ये क्या, ये ठीक ही है, अरे इसको भूत लग गया, किसी ने जो नहीं जानती, आज जो जानती है वो उसने क्या कहा, अरे भूत नहीं नंद का भूत लग गया। नंद का भूत लगना बड़ा कठिन है, वो लग जाएगा वो कभी उतरता नहीं, जिसके हृदय में जाएगा फिर उसे निकलेगा नहीं। पूतना गई उनको मारने का, जब ब्रज से जाने नहीं देंगे, हैं, यहां आ गई अब मैं छोड़ नहीं सकता, अकासुर बकासुर तृणावर्त जो भी आए किसी को छोड़ा नहीं, क्या किया, किसी न किसी रूप में अपना लिया। यदि आप लोग हृदय से एक बार भी यदि कह दिया हे कृष्ण मैं तेरा हूं, इस ऋण को नहीं चुका सकते कृष्ण, किंतु हृदय से होना चाहिए, धोखा देने के लिए नहीं, सचमुच में कृष्ण का होना चाहिए, कृष्ण का बन जाओ, एक बार निकल जाए हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, अपना सर्वस्व उस पर कृष्ण ने न्योछावर कर दे। ये गोविंद जी साधारण नहीं है, यद्यपि गोपियां ग्वाल बाल ये सबके साथ में रहते हैं, किंतु सर्वस्व लेने वाले और देने वाले भी हो, इसलिए इस कृष्ण में ऐसा कोई दयालु और प्रेमी रसिक भावुक नहीं मिलेगा, इसलिए इनके चरणों में आत्मन्योछावर कर दो, आज ही से इनका भजन करना आरंभ कर दो। इनके जितने भी नाम हैं उन सभी नामों में ये नाम श्रेष्ठ हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जब हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया तो मैं सोच रहा था जी गुरुजी ने ये दिया, राधे राधे कृष्ण तो दिया नहीं, राधा गोविंद तो दिया नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं किया, राधा हरे कृष्ण में तो ये डायरेक्ट राधा जी का नाम नहीं। फिर संग करते 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 गुरुजी का संग किया, पूछा तब मालूम पड़ा राधा नाम में से भी और कृष्ण नाम से माधुर्य इस हरे और राम और कृष्ण में है, इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत विशाल रस इसके अंदर में समाया हुआ है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु इस नाम को नहीं करते और दूसरों को नहीं देते, रसिकाचार्य ये रूप से उन्हीं के ये ठाकुर जी हैं, कौन, राधा गोविंद जी, बड़े रसिक हैं, यदि एक बार आ जाता है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए कहा मन मना भव मद भक्त। और अर्जुन इनको उद्धव जी को कृष्ण कह रहे हैं कि जाओ गच्छ उद्धव सौम्य, हे सौम्य ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता हमारे लिए बड़े दुखी हैं। अब तो 5 मिनट है, यहाँ तो 3 मिनट, 3 मिनट 2 मिनट है, माता पिता बड़े दुखी हैं और उससे भी कौन दुखी हैं, हमारी सखियां, और उनमें सखियों में भी राधा जी बड़ी दुखी हैं, ब्रज में जाओ उनको सांत्वना दे आओ। उद्धव जी ने सोचा मैं बहुत पंडित व्यक्ति हूँ, मैं समझा बुझा करके उनको सांत्वना दे दूँ, किंतु हुआ क्या, अब हम अगले अभी आरती के बाद में आप लोगों को बतलाऊंगा। बस अपने कथा प्रसंग पर लौट रहे हैं, मैं बतला रहा था उद्धव जी आए कृष्ण से मिले, कृष्ण के आंखों में आंसू भर रहे, उद्धव जी के हाथों में हाथ लिया और बोले उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता विरह में तड़फ रहे हैं, उनको सांत्वना देना, और उनसे भी यदि हमारी प्रियतमा गोपियां जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व सब कुछ छोड़ दिया है, जिनके प्राण केवल अटके हैं इसलिए कि मैं कह करके आया हूं जो कल न परसों आऊंगा, आप जाकर के उनको सांत्वना देने की चेष्टा करें, अपने तरफ से कुछ मत कहना, मैं तो उनका विरह अग्नि और बढ़ जाएगी, हम जो जो तुमको दे रहे हैं संदेश ये अपनी थैली में भर लो, पत्र नहीं संदेश दिया, और इससे न मिले तो इससे उनको सांत्वना, इस तरह से बहुत से संदेश उन गोपियों को दिया और खुद सोने के रथ पर बैठा करके उनको ब्रज में भेजा। उस समय नंद जी के पिताजी मैया और गोपियां सब नंद गांव में थी, जब से कृष्ण गए हैं गोपियां घर में नहीं लौटी, वहीं पर कदम्ब क्यारी एक है नंद गांव से कुछ और बरसाना की तरफ में, वहीं पर बिना खाए पिए, बिना कपड़े धुए और विरह अवस्था में पड़ी हुई हैं। उनकी प्रतिमूर्तियाँ जोग माया ने उनके घरों में भेज दिया है, इसलिए पतियों को और घर वालों को कोई चिंता नहीं है और वो खुद विरह में वहाँ पर पड़ी हुई हैं। कृष्ण कब आएंगे? उद्धव जी ब्रज में गए। इसके पहले समझिए, जब कृष्ण वृंदावन में थे तो उन गोपियों की कैसी स्थिति थी मन की, इस चीज को समझने के लिए मथुरापुरी में जादव पत्नियां जो थीं उनके मुख से सुनिए, उनकी दिनचर्या गोपियों की कैसी है। कृष्ण बलदेव को अक्रूर जी लाए, कुबल्यापुर को मारा, राजसभा में प्रवेश किया। कृष्ण बलदेव जी हाथियों के दांतों को अपने कंधे पर लिए हुए बिर्रस से प्रवेश कर रहे हैं, मुख पर हाथी के और महावत के रक्त के कुछ छींटे लगे हैं और भी बड़े मनोहर लग रहे हैं। जाते ही ताल ठोक करके मुष्टिक और चारुण दोनों ने कृष्ण को पकड़ करके खींचना आरंभ किया। आ जाओ हम लोग भिड़ जाएं। महाराज कंस ऊपर से देख रहे हैं, उनके रिक्रिएशन के लिए हम लोग परस्पर ये युद्ध कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, इसलिए उनको मन को लुभाने के लिए हम लोग बैठिए, हम लोग अभी थोड़ा सा रेसलिंग करके मल्ल क्रीड़ा करके हम लोग सब लोगों की प्रसन्नता करें। कृष्ण ने कहा जी ये तो उचित नहीं, अपने उम्र के लड़कों के साथ में हम लड़ सकते हैं? आप लोग तो बड़े बड़े काल के समान विकराल, लंबे चौड़े ऊंचे और परिपक्व पहलवान हैं, और मैं कहाँ अभी छोटा सा बच्चा शिशु हूँ, इसलिए अपने उम्र का कोई हो तो उसके साथ में हम कुछ दिखला सकते हैं मल्ल क्रीड़ा, आप लोगों के साथ में नहीं। अरे तुम पुतना को सजीव कहाँ पठा दिया, गिरिराज गोवर्धन को तुमने उठा लिया, तुमको तनिक भी परिश्रम नहीं लगा, और अघासुर बकासुर कालीय जमन इत्यादि सबको तुमने चुटकी बजाते ही उनको मार डाला है, इसलिए तुम कम पहलवान और वीर नहीं हो। और जबरदस्ती पकड़ करके उनसे मल्ल की तरफ में भीड़ने लगे। उस समय में वहाँ पर नंद बाबा भी बैठे थे, वसुदेव देवकी भी थीं, उग्रसेन भी थे, जादों की महिलाएं थी, ब्राह्मण लोग थे और सब लोग वहाँ पर। सोचा था कंस ने नंद के सामने, देवकी वसुदेव के सामने उसके पुत्र को मारूंगा, इसलिए सब लोगों ने क्लिक करके बहाना बना करके एक साथ में इसके ऊपर में आक्रमण करके मरने का उपाय उन लोगों ने रचा। तो जिस समय में वो लोग पकड़ करके खींच रहे थे, उस समय में और तो कोई नहीं, और वो तो बड़े डरे हुए थे, सहमे हुए, किंतु जादुओं की जो पत्नियां थीं रमणियां, उन लोगों ने कहा, क्या कहा, ये बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, धर्म की हानि हो रहा है, एक छोटे से शिशु को पकड़ करके एक कहाँ काल जैसा व्यक्ति पकड़ करके उसे मार रहा हो और वो सभा चुप हो तो उस सभा को अधर्म लगता है, हम इस सभा में नहीं रहेंगी, और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए, अधर्मों और पापियों की ये सभा है, इस दोनों छोटे शिशुओं को इन्हें किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करके मार देना चाहते हैं। और यह कहते हुए और कृष्ण का रूप का वर्णन करने लगी, ओहो ब्रज में कोई धन्य है तो ब्रज रमणीया ही धन्य है, पुण्यावत ब्रज भुवो भुव गोप बद्धो गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भावा। ये ब्रजवासियों का यह वृंदावन केवल गोपियों के लिए ही यह प्रसिद्ध है, धन्य है यहाँ पर ये गोपियाँ हैं। वो क्या करती हैं, पुण्यावत ब्रज भुवो जदैन लिंग गूढ़ा प्राण पुरुषा बने चित्रमाल्य। ये गूढ़ रूप में ये परब्रह्म स्वयं यहां यशोदा जी की गोदी में खेल रहा था। गोपियां आपको अपने आंखों से भर भर करके प्यालों से उनका दर्शन करती हैं। यदि कोई धन्य है तो ब्रज, और ब्रज इसलिए धन्य है कि गोपियां यहां पर है, गोपियों के लिए ये ब्रज धन्य है। गूढ़ा पुराण पुरुष, पुराण पुरुष वेद के प्रतिपाद्य, पुराणों के प्रतिपाद्य परम पुरुष कौन है? ये श्री कृष्ण गोविंद जी हैं। आज ब्रज की भूमि में क्या करते हैं? खेलते हैं। और गोपियां नैनों से भर करके प्याले से नैन रूपी और उनके रूप माधुर्य को, उनकी लीलाओं के माधुर्य का ये पान करने वाली हैं, इसलिए ब्रज धन्य है। वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है? जादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भी उदितो उखन मर्जनाद गायंत गोप्यो जनिता अनुरागा गायंत गोप्या उरुक्रम चित्त जान धन्यास्म को धन्यास उरुक्रम चित्त जाना। जैसे रथ पर कोई सवार होता है तो मान लो जी गोपियों का मन जो है ये रथ है, उस रथ पर कौन चढ़ा हुआ है? धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना, उनका मन ही रथ है और दिन रात कृष्ण उस पर आरूढ़ रहते हैं। एक सेकंड के लिए उनके चित्त से ये कृष्ण उतरते नहीं। अथवा इसका अर्थ ऐसा भी होगा, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना, कृष्ण का चित्त है वो रथ है। कृष्ण के मन में गोपियां ऐसे समाई हुई हैं जो उनके मन के ऊपर में सब समय रथ पर चढ़ी हुई आरूढ़ हैं, उनके मन से उतरती नहीं है। अर्थात कृष्ण क्या करते हैं, सब समय गोपियों की चिंता करते हैं। क्यों? आत्माराम कृष्ण है। आत्माराम किसको कहते हैं? कृष्ण की आत्मा है कौन? गोपियां हैं, इसलिए कृष्ण आत्माराम है। आत्म काम है, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं गोपियां। ऐसा नहीं कि कृष्ण को कोई इच्छा ही नहीं, नहीं, गोपियों के बिना रह नहीं सकते। सब समय कृष्ण के चित्त पर चढ़ी हुई हैं ये गोपियां। जादू होने वहने ने जब वो मुसल करके कूटना आरंभ करती हैं, काम में लगी हुई हैं, तो क्या करती हैं? गोविंद दामो धरमाधवेती गोविंद दामो धरमाधवेती गोविंद दामो धरमाधवेती गोविंद दामो। ओ बच्चे को थपथपी देकर कृष्ण सुला रही हैं, सो जा तो ये नहीं कहती। क्या करती हैं? थपथपी देती हैं बच्चे के पीठ के ऊपर में, पीठ के सो जा ना कर। गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति। कोई झाड़ू लेकर के बाहर रहे, जैसे कि यहाँ पर गोविंद जी के मंदिर में कोई झाड़ू दे रहे हैं, तो गोपियां क्या करती थी? झाड़ू तो दे रही हैं, गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति गोविंद दामो धरमाधवेति। हाँ, पहले लोग घर में लीपते थे, आज तो लीपते नहीं, तो हाँ पानी का पुचारा तो दे ही देते हैं, भले ही ना लीपें। गोबर और मिट्टी लगा करके सुंदर रूप में चौक पूरती थी। आजकल के महिलाएं चौक पूरना भी जानती हैं कि नहीं, विशेष करके पाश्चात्य देश के सभ्यता में बही हुई ये जानते ही नहीं होंगे। कहा ये रूढ़ी बात है, ये असभ्यता है, किंतु नहीं, यही सभ्यता है। कुछ दिनों में सारा संसार इसको सीखेगा। पश्चात्य देश की देखो लड़कियां सब सीख रही हैं, पुरुष लोग सीख रहे हैं। तो वो यदि लिपपोत रही हैं तो क्या कर रही हैं, मन कहाँ, गोविंद में, गोविंद दामो गोविंद दामो गोविंद अरे गोपियों को तो बात छोड़ दो, कृष्ण की प्यारी सहेली सखी द्रौपदी, उसका वस्त्र चीर हरण हुआ था जब वो दुर्शासन कर रहा था, तो वो क्या कर रही थी, रोती हुई दांतों से अपने अंचल को भी छोड़ दिया, हाथों को भी उठा दिया और त्राही त्राही हमारी रक्षा करो, नहीं क्या, गोविंद दामो धर्माधवेती, इसलिए घर का जितना काम है बस गोविंद दामोदर माध्यम से चलता है। ऐसा नहीं कि घर में लड़ाई कर दी, मारामारी कर दी, यह करो, कंट्रोल करना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। आजकल पति भी स्त्री को कंट्रोल करना चाहता है और पत्नी भी स्त्री को कंट्रोल करना चाहती है, और जब नहीं हुआ तो बस लो तलाक, बस दोनों तरफ से तलाक हो गया। सहिष्णुता नहीं है, भजन में सहिष्णुता चाहिए। तलाक तलाक की जरूरत है, कृष्ण से तलाक देगी न किससे तलाक देगी, इसलिए तलाक की बातें पश्चात देशों में ही रहने दो। भगवान का भजन करो ऐसे ही दिन रात। अब कूटना पीसना तो ये रह नहीं गया, तो हाँ ऑफिस जाते समय भी तो यह कह सकती है, गोविंद दामो धर्म धवेती, आप कार चला रहे हैं और अंट संट की इधर उधर बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप आंख से देख करके ड्राइव कीजिए और बोलिए क्या, गोविंद दामो धर्माधवेती, इसने पे भी नहीं बन भरता है तो अपना बाजार उठा लीजिए, मृदंग करताल उठा लीजिए और दो पांच घर के जितने हैं बाल बच्चे स्त्री पुरुष बाबा पिता सभी लोग एकत्र बैठ जाइए और सवेरे शाम को अंततः शाम को जरूर क्या कीजिए, गोविंद दामो धर्माधवेती। ये मथुरापुरी की जादव पत्नियां उनको नमस्कार कर रही हैं, आ उनका कितना बड़ो भाग्य कि वो साक्षात रूप में उनसे आदान प्रदान करती हैं, उनके साथ में नृत्य करती हैं, गाती हैं, कृष्ण को खिलाती हैं। और कहाँ हमारा दुर्भाग्य, हमने एक सिंह को देखा कहाँ, पिंजड़े में, जू है ना, जू में यहाँ पर शायद होगा सिंह, तो वो कैसा, जिसको खाना पीना कम मिल रहा है, दुर्बल हो गया होगा, अब कूद नहीं सकता है 24 हाथ ऊपर, ऐसे शेर को यहाँ पर देखा होगा वो पिंजड़े में बंद, तो ये कृष्ण यहाँ पर बंजड़े में बंद है, किसके, कंस के कारागार के अंदर में, और सभी लोग उसको मार डालना चाहते हैं और इस अवस्था में हम उनको देख रहे हैं। कैसे, चारू ने घूसी मारी, मुष्टिक ने मारी और उस समय कृष्ण को ताव आया, उत्साह आया वीर रस का, क्रोध से आंखें लाल हो गईं और कुछ वीर रस में देखा, ऐसे कृष्ण को देखा। और गोपियाँ कैसे देखती हैं, बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए कृष्ण को, हंसते हुए और अपने आँखों से कृष्ण से कुछ प्रणय की भिक्षा मांगते हुए, मानो उनकी आँखें क्या कर रही हैं, कृष्ण की, हमें कुछ भिक्षा दो, ऐसे कृष्ण को देख रही हैं कौन गोपियाँ, और यहाँ पर पिंजड़े में बद्ध उस कृष्ण को देख रही हैं। इसलिए धन्य है वो ब्रज की स्त्रियाँ जो कि कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप दर्शन करती हैं। उद्धव भी उस सभा में होंगे, जरूर होंगे उद्धव, उन्होंने सुना होगा ये सब चीजें। अब जब ब्रज जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा आज हमारा परम सौभाग्य है ये कृष्ण ने हमको ब्रज में भेजा, जरा इन गोपियों को तो दर्शन तो कराऊं जिसको ये करें। और कृष्ण दिन रात उन गोपियों की बातें कहते हैं, उस गोपियों की चरणों की जाकर के वंदना करूंगा, ऐसा सोच रहे हैं। किंतु उनकी इतनी महिमा अपार है, जो कृष्ण दिन रात उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अरे द्वारकापुरी में तो रुक्मिणी के पलंग पर सोए हैं, रुक्मिणी जी उस पलंग पर हैं और उनका अंचल पकड़ करके कहते हैं राधे राधे उठो उठो, भूल जाते हैं कि ये रुक्मिणी है, ये सत्यभामा है। कभी कभी अरे गैया कहाँ है, अरे श्यामली धवली कृषंगी कालिंदी गायों को पुकारते हैं। कभी ललिते विशाखे तुम हम पर रुष्ट हो गई, रात में बोलते हैं। और ये लोग देख कर कहते हैं कि हम ये 16108 कृष्ण के चित्त को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते। ये ग्वारी ने गांवों की और उन्हीं की दिन रात चिंता करते हैं, सोते उठते बैठते सब समय उन्हीं की। वो लोग बड़े आश्चर्य में हैं, कितनी सुंदरी कितनी मधुर हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं। उद्धव जी मन में कुछ सोचते सोचते वहाँ पर पहुँचे और उनकी प्रारंभिक दो एक बातें तो हमने बतला दिया है, अब थोड़े से और आगे बढ़ता हूँ। जी उद्धव जी ने क्या देखा, जिस समय शाम को वहाँ पर पहुँचे, नंद बाबा वहाँ पर घर के अंदर में थे, अंधे हो रही है जसोदा मैया, दिन रात पानी बह रहा है उनके आंखों से आंसू, अब कुछ देखना नहीं चाहती, बहुत कुछ देख लिया। नंद बाबा लज्जा के मारे घर से नहीं निकलते हैं। गोपियां कहती हैं, उलाहना देती हैं, अरे बाप ऐसा जो बेटे को बेच आया गहनों पर और कपड़ों पर, धन्य है तू पिता, ऐसा पिता कभी नहीं हुआ जो अपने बेटे को बेच आया। वो वहां से कृष्ण ने गहने दे थे ले आए थे, इसलिए उलाहना गोपियां देती हैं, ताना मारते हैं, इसलिए नंद बाबा कभी घर से नहीं निकलते, दिन रोते रहते हैं, पागल हो गए हैं। जसोदा जी और पगली हो गई हैं, उनकी कथा सुनेंगे कैसे पगली हो गई हैं। एक दिन तो वो दोपहर में जेठ की चिलचिलाती हुई धूप में खड़ी हो गई और कृष्ण की झिंगुली छोटी सी बांसुरिया और न जाने क्या क्या एक पोटली में बांधी और कहीं जाने की चेष्टा करने लगी। एक सहेली आई, बोली जैसे भाई सखी तू कहाँ जा रही, तो मैं जा रहा हूँ जहाँ हमारा लाला है। कहाँ जा रहे हैं, मैं मथुरापुरी जा रहा हूँ। क्या करेगी जाकर, वहाँ देवकी की देवकी पाटरानी है उनके पास जाऊँगी। क्या करोगी, उनके घर में हवेली में झाड़ू लगाऊंगी। बर्तन मलूंगी, जूठे साफ करूंगी और कहेंगी जी महारानी देवकी जी आपसे यही एक निवेदन करती हूं, अपने लाला का मुख हमको दिखला दे। मैं नहीं कहूंगी जी हमारा लाला है, और पछाड़ खा करके गिर गई। जसोदा जी की तो ऐसी स्थिति, नंद बाबा की वैसी, सारे ब्रजवासियों की यही स्थिति। नंद बाबा कृष्ण को भूलने के लिए सोचते हैं कि मैं जरा जमुना के तरफ में जाऊं भूल जाऊं, और वहां पर घाट पर जितने भी वृक्ष हैं ऐसे कोई वृक्ष नहीं जहां कृष्ण की लीलाएं नहीं हुई, कृष्ण की चरण धूलि और चरण की छाप नहीं। वहां विकल हो जाते हैं और याद आ जाती है तो गोवर्धन चले जाते हैं। गोवर्धन के कुंज कुंज में कृष्ण की लीला हुई है, वहां पर तो और भी कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। स्मरण ऐसा होता है जो रह नहीं सकते, अंत में विकल होकर के चले आते हैं। अंत में उद्धव जी नंद के घर में पहुंचे, लोगों को उसे पता लगा जे कृष्ण का मित्र उद्धव आया है ब्रज से, इनके भाई के लड़के थे, हमारा भतीजा आया है। घर से बाहर निकले अंधेरा कुछ शाम हो गया है, उद्धव को लेकर के घर में गए, बोल नहीं सकते कुछ, बोले और बस गला भरा है। पूछेंगे तो कृष्ण के संबंध में पूछ नहीं सकते, कृष्ण का स्मरण होते ही गला रुंध जाता है। लेकर के गए, सोचा जी पहले इसको कुछ खिलाऊं, थका हुआ होगा, बहुत दूर से आ रहा होगा। घर में कुछ नहीं, रसोई घर खाली पड़ा, चौका कभी आज तक लीपा पोता नहीं गया, चूल्हे में मकड़ों ने जाल बुन दिया। क्यों? रसोई होनी नहीं है, किसके लिए रसोई बनी? कृष्ण है नहीं, किसके लिए रसोई बनेगी? रसोई बननी बंद है, मकड़ों ने जाल बुन दिया और बर्तन सब ऐसे बिना मले हुए औंधे पड़े हुए हैं, इधर के उधर सारी चीजें अस्त व्यस्त है। एक ब्राह्मण को खबर दिया गया, वो ब्राह्मण किसी प्रकार से दूध और चावल मिला करके बिना मीठा का ही, जैसा उसके घर में था वैसे ही खीर पका करके ले आया, उद्धव जी को खिलाया। इन लोगों का प्रेम देख करके उद्धव सोचने लगे, मैं समझता था जो मैं भक्त हूँ, कहाँ इनके सामने भक्त। फिर खिला पिला करके जब थोड़ा सा आराम हो गया तो उद्धव जी से ये पूछना चाहते हैं कृष्ण के संबंध में, हमारा लाला कैसा है, कृष्ण कैसे? बोल नहीं सकते, आते ही गला भर जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगता है। जब विकल हो गए नहीं बोल सके तो उन्होंने अंत में बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण करके कहा, उद्धव हमारा भैया वसुदेव ठीक है, कुशल से है, उस पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, उसके सारे लड़कों को कंस ने मार डाला, आज सौभाग्य की बात है कि वो अपने पापों से ही ये कंस मारा गया। और इतना कहते कहते बस कृष्ण का थोड़ा सा स्मरण हो आया, बोले कृष्ण कैसा है, कह नहीं सके, लाला कैसा है, और रोने लग गए। इतना रोने लगे जिसको देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए, उनके आंखों में आंसू नहीं, देख रहे हैं केवल, इतना रो क्यों रहे? लोग पूछते हैं कि भक्त लोग इतना रोते क्यों? अब उनके हृदय से पूछिए, वो भी नहीं बतला सकते जो हम क्यों रोते हैं, बड़ा मुश्किल है। उद्धव जी ने देखा ये जगत में कोई सौभाग्यवान है तो नंद बाबा से कोई बढ़कर के सौभाग्यवान नहीं। सब लोग अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए और लोगों के लिए रोते हैं, किंतु कृष्ण को अपना बेटा मान करके और इतना रोना, पागल हो जाना, उन्मत्त हो जाना, ये तो देखा नहीं जाता। इसलिए शास्त्रों में उसको कहा गया है महासौभाग्यवान। तो मैं ये क्या कहूं कि आप खूब रोइए, नंद बाबा बड़े सौभाग्यवान हैं, खूब रोइए, तो सांत्वना तो होगी नहीं, ऐसे करने से सांत्वना खूब रोइए, मुझको तो कृष्ण ने भेजा सांत्वना देने के लिए, तो सांत्वना नहीं है तो विरहाग्नि बढ़ जाएगी और रोएंगे और अधिक। इसलिए मुझे क्या कहना चाहिए, क्या कहूं जो तुम मत रो? अरे जिस एक बूंद यदि कृष्ण के लिए आंसू आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो गया, जन्म जन्मांतर सार्थक हो गया, यदि कृष्ण के लिए एक आंसू आए। अभी कोई बेटे को कुछ हो जाए ना, देखिए जी कितने आंसू आते हैं, पत्नी बीमार पड़ जाइए तो देखिए, और यदि किसी का अंतकाल हो गया तो देखिए जी कितना रोते हैं। कृष्ण के लिए रोआई आए तो हाँ जी महापुरुष कृष्ण के लिए रो रहे हैं अपना बेटा समझ कर। वो किसका बेटा, कौन बेटा किसका, वो तो स्वयं प्रभु भगवान है और उसको अपना बेटा मान करके ये रो रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। तो क्या कहूँ, जब मत रोइए तो हमारा शास्त्र गला पकड़ लेंगे, जो ऐसा मत कहो, और यदि कहो जो खूब रोइए तो ये भी मैं नहीं कह सकता, मैं कहूँ क्या? उद्धव इतने बुद्धिमान, विद्या सत्तम, बृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के सखा, आज अकल उनकी पूरी बंद हो गई, कुछ नहीं सोच सके, जे मैं क्या कहूँ और नहीं कहूँ, इतने बड़े विद्वान जो कृष्ण से सब समय तर्क भी कर सकते हैं, आज उनकी बोली बंद हो गई। तत्पश्चात कहे जी ठीक ही है, ये जरूर सौभाग्यवान है। इसलिए वो बोले नंद बाबा, आप और मैया जसोदा संसार भर में यदि कोई सौभाग्यवान है तो आप ही भगवान हैं। जो भगवान को आप बेटा मान रहे हैं, इतने में नंद बाबा जो रो रहे थे जरा शांत हो गए और बोले अरे बेटा तुम ये क्या कहते हो, हमने सोचा जे पढ़ लिख करके अब तू बड़ा हो गया बुद्धिमान हो गया होगा और कृष्ण का साथी भी है जरूर अकल होगी, किंतु मैं देखता हूँ कि अकल का दांत भी तुमको नहीं गिरा, जैसे कहते ऐसे ही रह गए। अरे देखो बाप एक था, कौन बाप, महाराज दशरथ एक बाप था, बेटा चला गया वनवास और वो उसने कहा क्या हा राम और हा कहने के बाद राम नहीं कर सका, प्राण छोड़ दिया। मछली बिना पानी के प्राण छोड़ देगी, और अभी तक मैं वज्र हृदय का बना हुआ अभी तक जीवित हूं जो मर नहीं गया बेटे के लिए, और तुम कहते हो जो तुम्हारा बेटा भगवान है, मैं तो पहले नहीं जानता था जो बेटा हमारा भगवान है, अब मैं जाना जी हमारा बेटा भी भगवान भी है। अरे जिसका कोई बेटा यदि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाए तो मैया का हृदय कितना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, बड़े गरीब परिवार के ब्राह्मण के लड़के थे, पढ़े लिखे भी खूब अधिक नहीं थे, संस्कृत के शास्त्री और कुछ अंग्रेजी पीछे से पढ़ा, और जब वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हो गए तो उनकी बहू और उनकी मैया को कितना आनंद हुआ होगा आप बतलाइए। तो नंद बाबा कह रहे हैं मुझे तो पता था कि वो साधारण हमारा बेटा है, आज हमको मालूम हुआ कि हमारा बेटा ये त्रिभुवन के ईश्वरों का भी ईश्वर है और हमारे घर में बेटा आया है। किंतु उद्धव तुमको ये पता नहीं, हमारा बेटा भगवान है, ठीक है, आज हमारा सौभाग्य था कि बेटा हमारे घर में भगवान बन करके आया है, किंतु मैं ऐसा अयोग्य उसकी सेवा करने योग्य नहीं रहा, इसलिए हमको छोड़ करके वो दूसरी जगह में प्रेम पाने के लिए गया, क्योंकि उसे मैं प्रेम नहीं दे सका, मैं बहुत ही अयोग्य हूँ। हमारा आया हुआ रत्न और हाथ से निकल गया, बतलाओ तो संसार में दुर्भागा कौन है, मैं ही संसार में दुर्भागा हूँ जो कृष्ण बेटा के रूप में मिला और वो हमारे हाथ से निकल करके वसुदेव देवकी के पास में चला गया, ये कितने परिताप और दुख की बात है, ये कह करके बस मूर्छित होकर के गिर पड़े, बोल नहीं सके। उद्धव जी ने कहा अद्भुत, हमने सुना था प्रेम किंतु प्रेम देखा नहीं था, आज प्रेम की मूर्ति जसोदा जी को और नंद बाबा को देख रहे हैं। रात भर इसी तरह से होते होते बीत गई, मालूम है जी एक पल बीत गया, सवेरा हुआ अरुणोदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण का कुंड एक है नंदगांव में, स्नान किया झाड़ियों से घिरा हुआ और उसी के पास में उद्धव क्यारी है, अब उद्धव क्यारी कहे जाने लगी, पहले थे इसका नाम कदम्ब क्यारी, हमने भी देखा है वहाँ पर, आज से 60 वर्ष पहले गुरु जी के साथ में वहाँ पर लाखों कदम्ब के पेड़ बड़े बड़े मोटे मोटे, सब समय भीनी भीनी सुगंध आती थी, कृष्ण की वहाँ पर रासलीला हुई थी, गोपियों से वहीं पर मिले थे और गोपियाँ पीछे से विरह में वहीं पर पड़ी पड़ी वहीं पर उद्धव जी से मिली थी, बहुत ही सब दिव्य स्थान है। तो वो उसमें देखा उसकी तरफ में, आज देखा जिस अरे ये अद्भुत, ये कदम्ब क्यारी उसमें लाखों गोपियाँ एक जगह बैठी हैं, सभी रो रही हैं, बड़ी बिरहातुर हैं। एक ने कहा देखो तो ये बड़ी सुंदर गंध आ रही है, ये तो कृष्ण की बलमाला की गंध मालूम पड़ती है, हमारी नाक धोखा नहीं दे सकती, ये व्यक्ति जो आ रहा है वो कैसा था, कृष्ण जैसा सांवला, गुण भी ऐसे ही, रूप भी वैसे ही, और कृष्ण ने अपना ड्रेस पूरा पहना दिया है, जहाँ ललिता जी विशाखा जी अथवा श्रीमती राधिका जी एक हरे भरे तमाल के वृक्ष को देख करके और उनसे लिपट जाती थी कृष्ण समझकर और उसे बातचीत करती थी। आज उद्धव उनके जैसे देखने पर भी और उनके रूप से भी वैसे और उनको अपना ड्रेस भी कृष्ण ने पहना दिया है और तभी राधिका जी को प्रेम, वो प्रेम ने उनकी रक्षा की, जाकर के लिपट नहीं गई, बाघों से बादलों से मिलने की चेष्टा करती हैं। काला चीज देखते हैं उसको कृष्ण मानती हैं, किंतु आज उद्दीपन नहीं आया, कह रही हैं ये सर ये उद्धव कृष्ण का, ये कृष्ण का अनुचर है, कृष्ण का संदेश पाक है, जरूर कृष्ण ने इसे भेजा है। एक गोपी बोली किस लिए भेजा, जरूरत क्या, जरूरत तो कोई है नहीं, यदि भेजा होगा तो हो सकता है हमारा तो गोप इनसे इनसे कोई संबंध नहीं, और यदि संबंध भी था तो वो खत्म हो गया, क्या था, हमने माना जी हमारे प्रियतम है, उन्होंने माना जी हमारी बल्लभा है, मानने का प्रश्न था इसलिए ये खत्म हो गया, छोड़ करके चले गए, ठीक है, किंतु अपनी मैया को कैसे भूल सकते हैं, उनका रक्त मांस ये सब कहाँ से बना, यशोदा मैया के दूध से ही तो पले हैं, इसलिए यशोदा मैया को छोड़ नहीं सकते, नंद बाबा को छोड़ नहीं सकते। यदि मिट्टी का एक बर्तन है वो कह दे जे मैं मिट्टी को छोड़ रहा हूँ तो ये ठीक है कि गलत है, समझो फिर से, एक घड़ा है मिट्टी का और ये घड़ा कह रहा है हम मिट्टी को छोड़ रहे हैं, मिट्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये हो सकता है, क्यों, तो मिट्टी से ही बना है, तो कृष्ण का जितना अंग है बुद्धि है वाक्य है जो कुछ बना है ये कहाँ से बना, मैया से तो बना है, बाप से, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो संबंध तोड़ने से भी नहीं होगा। यदि कोई को पुत्र मैया को कह दे जे मैया मैं तेरा पुत्र नहीं हूं तो मैया छोड़ देगी या संबंध टूट जाएगा, जन्म तक वो जरूर रहेगा मैया और बेटा का, पिता और पुत्र का संबंध ये छूट नहीं सकता छोड़ने पर भी, इसलिए जो माता पिता का ऋण नहीं चुकाते, माता पिता की सेवा नहीं करते, वो अपने कर्मों से स्वर्ग में जा करके भी वहाँ पर अपना मांस खाना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ रखो। जिन्होंने अपने मैया बाप का सेवा नहीं की उनको क्या होगा, भले ही अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, किंतु यदि स्वर्ग भी हो जाएगा तो उनको अपना मांस काट करके खाना होगा, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में देखा है, माता पिता से ऋणी कोई नहीं हो सकता, कितने दिनों तक गर्भ में कैसे धारण किया, टट्टी और पेशाब भी अपने अंक में रखे और यदि टट्टी सिर पर भी कर दिया तो हंसते हंसते पूछ दिया, पेशाब भी कर दिया तो गोदी में तो क्या करती है, मुस्कुराती है उसके मुख को पूछ देती है, और ऐसे मैया को छोड़ देते हैं लोग, कैसे निष्ठुर और अत्याचारी हैं, इनको समझना चाहिए। आजकल ये सभ्यता में सबसे बड़ा दोष है, इसलिए इस शिक्षे को समझना चाहिए, माता पिता का ऋण नहीं दूर हो सकता, और इस पर भाई और जो बड़ा माता पिता का भी माता पिता का जगत का माता पिता है उस गुरु का ऋण तो कभी चूक नहीं सकता, किंतु गुरु भी गुरु हो, कुपुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी और पिता कभी भी कुमाता पिमाता नहीं हो सकते हैं। यदि कोई बंदूक से भी अपने पिता को मारे तो वही कहेगा तुम सुखी रहना, ऐसा हृदय उनका होता है। तो ये नंद बाबा क्या प्रसंग बतला रहा था भूल जाते हैं, हाँ तो वह गोपियां कह रही हैं माता पिता से तो ये छूट नहीं सकते, ये माता पिता को सांत्वना देने के लिए जरूर भेजा होगा। दूसरी कहती है कि नहीं बात ऐसी नहीं, बात ऐसी है जो वो कंस मर गया ना उसको तेरहवीं देनी है और पिंड देना है, उसको वहाँ पर पिंड नहीं मिला, ये पिंड लेने के लिए हैं, यहाँ पर सब ब्रजवासी लोग मरे हुए होंगे गोपियाँ और गोप और उनका हृदय पिंड लेकर के उसको संस्कार करेंगे। उद्धव जी मन ही मन में मर रहे, यह पृथ्वी जी आप तो टुकड़े हो जाएं, मैं उसके अंदर में समा जाऊं। हमको ऐसे ब्रज में नहीं आना चाहिए था, इस रूप में सोच भी नहीं रहे। आगे बढ़े, देखा क्या, एक सोने की पुतली है, बड़ी दुबली, केवल मरने ही बाकी है, श्वास बहुत धीरे धीरे आ रही है। ध्यान्ति कृष्ण संगमम, वो उसी रूप में विरह में छटपटा रही है और सारी गोपियां उसकी सेवा कर रही हैं। आप लोग अंदाजा कर सकती हैं ये कौन हो सकती हैं, होश नहीं है, कभी कभी चिल्ला पड़ती है, कभी रो रहती है, कभी कुछ। ध्यान्ति कृष्ण अंग संगमम, ध्यान कर रही है मन ही मन में, वो यहां से तो गया, मथुरा में होगा, क्या कर रहा होगा, जरूर वहां के जादव पत्नियों के साथ में जरूर कहीं होगा, वो उनका संग कर रहा होगा। कैसे, वहां पर एक रूठती होगी तो एक को रूठाने से मनाता होगा, तब तक दूसरी रूठ जाती है, और तो हजारों वहां पर एक एक से सुन रही। हम तो ग्रामीण महिलाएं हैं, हम लोगों को सौंदर्य कहाँ, हल्कों में कोई गुण नहीं, और वो एक एक से गुणी रौपति माधुर्यवती ये जादव पत्नियां आएंगी और कभी रूठेंगी और वो मनाएंगी, सारा दिन रात उनको मनाने में ही लग जाता होगा, और इस तरह से उनका ध्यान करती हुई रूठ गई। देखो कृष्ण वहां नहीं है, विरह में ही ऐसे मालूम होता है कि वो संग कर रहे हैं, याद आ रही है, और याद होने से वो बिगड़ गई और उनको मान हो गया, उस मान में भर करके ये श्लोक सब बोलने लगी, अपने भावों को बतला रही है। उद्धव जी वहां पर पहुंचे हैं, वहीं पर उसी समय में कृष्ण ने एक भौंरे का रूप धारण किया और मंडराते हुए श्रीमती जी के चरणों के पास में, जो ऐसे सो रही हैं, चरणों के तरफ में झंकार करते हुए समझा जी ये कमल का पुष्प है और उसमें मधुपान करने के लिए उसमें प्रवेश करना चाहा। राधा जी को बहुत तीव्र मान हुआ। मधुपकित बंधो मांस पिशांघ्री शपत्न्या कुछ बलिलित माला कुंकुम अश्मश्रुभिर्णा कुंकुम ये मधु कितव बंधो, कितव बंध माने क्या, कपटों का, धूर्तों का राजा, कपट चूड़ामणि, हमारे पैरों को मत छू, यहां से जल्दी से चला जा, जाओ कहां जाऊं, मधुपुरी चला जा, जहां पर मधु बिकता है, मधु माने शराब कहो, मधु माने क्या, शहद, शहद नहीं, यहां पर होता है शराब का दूसरा शुद्ध शब्द क्या है, मदिरा, सूरा, जहां पर बिकता है, कौन बेच रहा है, मधुपुरी में दुकान लगी हुई है, और मधु का पति कौन है, मधुपति कृष्ण है, तो उनको कृष्ण नहीं करे मधुपति, मधु का पति, और वो पान करके मधु अपवित्र हो रहा है, उसको होश नहीं है, ये कहां उड़ना चाहिए, कहां जाना बैठना चाहिए, उसको पता नहीं, जैसे भ्रमर जो पुष्प होते हैं, नहीं गंध रही, गंधयुक्त कुंद और बेली चमेली मालती ये जाति पुष्प होते हैं, उसमें बहुत मधु रहती है, कमल में मधु रहता है, उस पर बैठते हैं, उसका रस पान कर लेते हैं, फिर तो बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, फिर जिसमें रस नहीं उस पर भी बैठ जाते हैं। गोपियां ताना मार रही है किसके लिए, ये जो मधुपति है काला, जिसका हृदय बाहर काला, उलाहना दे रही है उस भ्रमर को, तू हमारे पास में आत्मता, वहीं से तू मधुपान करके अपवित्र होकर के आ रहा है, तुमको ज्ञान नहीं जो हमारे पास में कैसे आना चाहिए मनाने के लिए, ये भी तुमको ज्ञान नहीं, माना कि तुम वहीं से आ रहे हो किंतु अकल नहीं है, तुम पागल हो रहे हो। अरे मैं वो भन भन कुछ कर रहा, झंकार कर, उसने सोचा जो पैरों में गिर करके कह रहा जी, स्वामिनी जी आप ऐसे रुष्ट क्यों हैं, वो तो मदिरा कभी पान नहीं करते और कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते, उन्होंने आपको मनाने के लिए हमको भेजा है, इसलिए कृपा आप मान जाइए। वो कहते अरे दूर रह, अरे तुमने अपने गोफों में क्या, गुल्फों में क्या लगा रखा, जब बैठता है वो कमल इत्यादि के ऊपर में तो उसके पीले जो होते हैं पराग वो लग जाते हैं पीले। उसने समझा क्या, श्रीमती जी ने क्या समझा, ये कहीं जदुपतियों की स्त्रियों से मिला होगा और उसके माला में उनका कुमकुम लग गया और लग जाने से उस पर ये बैठा भौंरा और उसके गुल्फों में ये लग गया, वहीं से अपवित्र होकर के आ रहा, भगो भगो यहाँ से तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाव में आविष्ट होकर के कह रही हैं। उद्धव जी सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में सकृत अधर सुधा, सकृत अधर सुधा पायित्वा मोहिनी पायित्वा सुमन से वसदस्तत्तजेष्मान भवन। अरे जैसे मधुकर, मधुकर माने मधु का पान करने वाला, मधु कौन कौन है, एक तो मधु जानवर छह पैरों का और एक मधु होती है ये मदिरा उसको पान करने वाला, एक मधु होता है मधुसूदन, संसार के प्रति जो आसक्ति उसको काट देने वाले को भी मधुसूदन कहते हैं, और एक होता है मधु गोपियों के प्रेम का मधु का जो छक करके पान करता है वो कृष्ण मधुसूदन है। आज वो भौरे बन करके यहाँ पर आए हैं, साधारण नहीं। उद्धव जी दूर से देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और ये मान अभिमान भाव कितने तरह के आ रहे हैं, कभी चढ़ाओ कभी उतराओ, और उसके साथ में उसको गाली गलौज कर रही हैं, कृष्ण को भी कर रही हैं। कैसे, जैसे भौरा उन्मत्त होने के बाद में गंदे फूलों पर भी बैठ जाता है, तो इसको भी ऐसे ही विचार नहीं, ब्रज से उड़ा, ब्रज का मधुपान किया और फिर मथुरा में बैठ गया, कहाँ, एक फूल के ऊपर में, कौन सा फूल, एक फूल बड़ा दुर्गंध होता है, क्या उसका नाम होता है मुझे याद नहीं, बहुत तीव्र गंध उसमें होती है, बस उस पर बैठ गया, ज्ञान नहीं। इस तरह से गोपियों को प्रेम को छोड़ करके मथुरा में कुब्जा के प्रेम पर रिझ गए, ऐसे ये मधुकर हैं। सकृत अधर सुधांग पायित्वा, बहुत इसकी सुंदर सुंदर व्याख्याएं हैं, अभी समय नहीं, अभी तो समय होता जा रहा है इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूँ, थोड़ा सा रसपान करा दिया, यदि फिर पीछे आऊँगा कभी आप लोग मौका देंगे सेवा का अवसर तो इसको विस्तृत रूप से मैं समझाऊँगा, तब ऐसा समझ लीजिए। जो अंत में गोपियाँ कह रही हैं, देखो मृगयूकपंद्रम व्यवधे लुप्त धर्म, स्त्री में विरूपा स्त्री जीत कामयानाम बलिमत्वा अच्छा दुष्ट जतकथार्थ, तात्पर्य इसका ये है श्रीमद् भागवत का, ये चुने हुए श्लोक है, इसको भ्रमर गीत कहते हैं, कृष्ण भ्रमर करके इसका पान करने के लिए गए हैं इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत है। ये मधु क्या है, ये राधा जी की वाणी कह रही हैं, अरे हमने सुना जोग माया से जो ये भगवान है, जैसे भी हो वो भी तो काले हैं श्याम और ये भी काला है, कालों का संग नहीं करना चाहिए, रूप गोस्वामी ने तो यहां तक कहा है, खबरदार वृंदावन मत जाना, खबरदार वृंदावन, आप लोगों को भी मैं परामर्श दे रहा हूं, आप लोग यदि अपने बाल बच्चों स्त्री पुरुष और संसार का सुख लूटना चाहते हैं खबरदार वृंदावन में मत जाओ, रूप गोस्वामी का ये वचन है और हम भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, यदि संसार का सुख भोगना है वृंदावन में मत जाओ, यदि भूल से किसी प्रकार से वृंदावन में पहुंच गए तो जमुना के किनारे केसी घाट एक है, खबरदार मत जाओ, जाने से क्या होगा, मैं कहता हूं ना घर बाल भूल जाओगे, पत्नी भूल जाओगे, बेटे का स्नेह भूल जाओगे, पागल हो जाओगे, भिखारी बन करके वृंदावन में जाना पड़ेगा। अरे वहाँ पर कैसी घाट में स्नान करके धीरे धीरे उधर ही चला जाना, वहाँ पर गोविंद जी का ये मंदिर है, यही गोविंद, गोविंद के मंदिर में मत जाना, घुसना मत, सात जोड़ी से ही वहाँ पर धूली लेकर के लौट जाना। और यदि आ गया कोई गोविंद जी के सामने और इनका रूप देखा, बंसी बजाते हुए मोर मुकुट देखा, उसकी एक मुस्कुराहट पर अपने को फिदा कर देंगे, फिर घाट नहीं लौटना है। जैसे बहुत से हमारे देखो ये ब्रह्मचारी हैं, एक बार इनको हमारे मुख से कृष्ण नाम सुना, इन बेचारों ने कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, कोई कहाँ, कोई बंगाल, कोई इधर का उधर का, ये सब सारे देख रहे हैं, लाल वाले देख रहे हैं ना, इनका घर उजड़ा हुआ है। आप लोगों का घर ऐसा नहीं उजड़े, थोड़ा सा कृष्ण की चर्चा सुना दी बस घर छोड़ दिए, हैं रहने का कोई स्थान नहीं, जैसे पक्षी पेड़ों पर रहते हैं ऐसे इधर उधर भटकते हैं, कोई भी सहारा नहीं, अपने रुलाते हैं, अपनी मैया को रुलाते हैं, बाप को रुलाते हैं, सबको, और यदि स्त्री है तो स्त्री को भी रुला करके आए हैं, साधारण नहीं। ऐसे ही यदि वृंदावन में ये राधा गोविंद जी का दर्शन हो गया और उन्होंने दर्शन यदि दे दिए, घर नहीं लौटना होगा, भिक्षु की तरफ में कुटी बांध करके बिना कुटी के ही ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे। और गोविंद 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 दामो धर्म धृति, समय हो गया, गोविंद बस ठीक, अच्छा होगा समय। जय जय राधा गोविंद जी।